श्री परमात्म ने नमः। गीता का सार। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 33। भगवान सबके हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता का सार बाय जगत का सार में। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33 की। कृपया इस दिव्य ज्ञान को अधूरा न सुने, क्योंकि इससे गीता जी का अनादर हो सकता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप शुरुआत में ही छोड़ सकते हैं, हम या भगवान बुरा नहीं मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। कल हमने पढ़ा था श्लोक 32, जिसमें भगवान ने बताया कि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र आदि भी यदि मुझे भजते हैं तो वे भी परमगति को प्राप्त करते हैं। अब आइए आज के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 9 श्लोक 33 के पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। 9.33 भावार्थ, जब स्त्री, वैश्य, शूद्र जैसे लोग भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्तजन तो निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ, भगवान कहते हैं कि मोक्ष सभी के लिए है। व्यावहारिक अर्थ, जीवन चाहे जैसा हो, यदि आप प्रभु में श्रद्धा रखते हैं और भक्ति करते हैं तो आप भी परमगति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मंत्र, जाति, लिंग, वर्ग से ऊपर उठकर केवल भक्ति ही परम मार्ग है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भैहरम सर्व लोकैक नाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर वेदः सांग पद क्रमोपनिष्ते गायन्ति यम सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनो यस्यांतर न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम।
पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजनों की प्रशंसा एवं भगवत भजन के लिए आज्ञा। श्लोक 33। किन पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। उच्चारण की विधि, किम, पुनः, ब्राह्मणा, पुण्या, भक्ता, राजर्षय, तथा, अनित्यम, असुखम, लोकम, इमं, प्राप्य, भजस्व, माम। 33 शब्दार्थ, पुनः अर्थात फिर, इसमें तो कहना ही, किम अर्थात क्या है, जो, पुण्या अर्थात पुण्यशील, ब्राह्मणा अर्थात ब्राह्मण, तथा अर्थात तथा, राजर्षय अर्थात राजर्षि, भक्ता अर्थात भक्तजन, मेरी शरण होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू, असुखम अर्थात सुखरहित, और अनित्यम अर्थात क्षणभंगुर, इमम अर्थात इस, लोकम अर्थात मनुष्य शरीर को, प्राप्य अर्थात प्राप्त होकर, निरंतर, माम अर्थात मेरा, ही, भजस्व अर्थात भजन कर। अर्थ, फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 33 व्याख्या, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्रे सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परमगति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परमगति को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निःसंदेह परमगति को प्राप्त हो जाएंगे। यहां भक्ता पद देहली दीपक न्याय से ब्राह्मण और राजर्षि, क्षत्रिय इन दोनों के लिए आया है। पहले 30वें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है उसके विपक्ष में यहां पुण्य पद आया है और 32वें श्लोक में जिनको पापियों ने कहा है उनके विपक्ष में यहां ब्राह्मणा पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहां ऋषि शब्द आया है और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं यह बताने के लिए यहां राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाए तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। पुण्या ब्राह्मणा राजर्षय और भक्ता ये तीन बातें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर से बनते हैं तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी, इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही। यहां पुण्या ब्राह्मणा और राजर्षय ये दो पद आए हैं। परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहां भक्ता पद आया है। अनित्यम सुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम, यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है, अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है, किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है असुखम, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुःखालय बताया है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहां इमन लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है, प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। मां भजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसी भाव को लेकर भगवान ने यहां आत्मनेपदि भजस्व क्रिया दी है, इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे, उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। मार्मिक बात। जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है चेतन है अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूं, किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है, मेरे सिद्धांत से मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूं, नहीं मान सकता, और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है, नहीं लग सकती। कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र हैं ही। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं? और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूं? वे तो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में पापाचार में लग गए थे, पर वास्तव में वे हैं तो मेरे ही अंश। ऐसे ही जो पापयोनि वाले हैं, अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में और पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियों में जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं। अतः ऐसे पापयोनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी, इन दो नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया। पहले स्त्रिय पद से स्त्री जाति मात्र को लिया। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं, जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः इनको पहले रखा है। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्विजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्विजाति नहीं है, अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वे शूद्र हैं। वे स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परमगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं, अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परमगति को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह ही क्या है? भगवान ने यहां 30वें से 33वें श्लोक तक भक्ति के साथ अधिकारियों के नाम लिए हैं, दुराचारी, पापयोनि, स्त्रिया, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन सातों में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है, वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का, सद्गुण सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है, 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक तक। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहां भक्ति के जो सात अधिकारी बताए हैं, उनका विभाग वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आचरण दुराचारी और पापयोनि, और व्यक्तित्व स्त्रिया को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, जन्म, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है। परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं। स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं। जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचन मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के सात अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता विशेषता आई है, वह किसी वर्ण आश्रम भाव आचरण आदि को लेकर नहीं आई है, प्रत्युत भगवान के संबंध से, भगवत भक्ति से आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के चार भेद बताए, और यहां वर्ण आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के सात भेद बताए। इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है, पर वर्ण आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है, अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं। हां, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, यह बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचन मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। परिशिष्ट भाव तीसवें से तैतीसवें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के सात अधिकारियों के नाम लिए हैं, दुराचारी, पापयोनी, स्त्रिया, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन सातों से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम इन श्लोकों में आ गया। कोई चारों वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो चारों वर्णों से नीचे हैं, वे यवन, हूण, खस आदि सब पापयोनि में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, पशु, पक्षी आदि भी पापयोनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है, वह दुराचारी है और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है, वह पापयोनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी हैं, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता, संबंध ही मानते हैं, जाति आचरण का नहीं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराय, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। मानस अरण्य 035 2-3। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व वास्तविकता को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है। सातवें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार भेद बताए हैं। और यहां बाहर की मान्यता, जाति तथा आचरण को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के साथ भेद बताए हैं। सातवें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहां उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अधिकारी किसी भी योनि में कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। किन पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, इस श्लोकार्थ के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पापयोनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान हैं, गीता इसी अध्याय का 29वां श्लोक। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मई ते तेषु चापेहम, गीता 9:29। अतः दुराचारी, पापयोनि, स्त्रिया, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये सातों भक्ति में एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता, अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी भजन है। अनित्यम सुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और सुखरहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहे और सुख भोगते रहे, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। इसलिए यहां भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। संबंध 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं।
प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस दुखमय संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए? टुडेज शॉर्ट्स: विलासिता में समय बिताना चाहिए। बी: केवल पुण्य आत्मा ही भगवान को भज सकते हैं। सी: प्रभु का भजन करना चाहिए। डी: संसार को ही परम सत्य मानना चाहिए। सही उत्तर: सी: प्रभु का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा, अनित्यम सुखम लोकमि में प्राप्य भजस्व माम। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 9 श्लोक 34, जिसमें भगवान कहेंगे, मुझे मन से स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, यानी भक्ति की पराकाष्ठा। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद् गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। आज की पुस्तक अनुशंसा श्रीमद् भगवद् गीता हिंदी टीका के साथ मोटे अक्षर सरल भाषा में पढ़ने के लिए बेस्ट। अमेज़न लिंक https://mzn.to/42drnxb। अपने आध्यात्मिक पथ की शुरुआत करें।